नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार, लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू प्रशांत, सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट मैच में हराकर किया क्लीन स्वीप। एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 259 रन का लक्ष्य दिया। सुल्तान जोहोर हॉकी कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बराबरी पर खत्म। और मेघालय सरकार ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत ने दिल्ली में दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। आइए सुनते हैं पूरे मुकाबले का हाल।
भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर वेस्टइंडीज से टेस्ट श्रृंखला में एक तरफा जीत हासिल कर अपना दबदबा जारी रखा है। ये शुभमन गिल की बतौर कप्तान पहली टेस्ट सीरीज थी जिसमें टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के 5वें दिन भारत ने 121 रन के लक्ष्य को 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। केएल राहुल ने नाबाद 58 रन की पारी खेली और साई सुदर्शन ने 39 रन बनाए। पहली पारी में भारत ने 518 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज 248 रन पर सिमट गई थी। मुकाबले के 4थे दिन कल फॉलो ऑन खेल रही वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द मैच और रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। भारत ने अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच पारी और 140 रन से जीता था। वेस्टइंडीज से भारत ने लगातार 10वीं टेस्ट श्रृंखला जीती थी। श्रृंखला में भारत के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और अनुभवी हरफनमौला रविंद्र जडेजा का शानदार प्रदर्शन रहा। वहीं गेंदबाजों में कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने भी धारदार प्रदर्शन किया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
शिवेंद्र जी, पूरे श्रृंखला में ही भारतीय टीम का डोमिनेंस रहा है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम में भी बात करें तो युवा यशस्वी जायसवाल या कप्तान शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया।
जी हाँ, जब कोई टीम जीतती है और ऐसे जीतती है जैसे भारतीय टीम ये सीरीज जीती है, तो इनफैक्ट गलतियां निकालना, खामियां ढूंढना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो भारतीय टीम ने इसमें तो कोई बात ही नहीं है, क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वेस्टइंडीज के लिहाज से अचीवमेंट ये रहा कि 5वें दिन तक वो मैच को ले गए और उनकी ओर से बड़े लंबे अरसे के बाद एक सीरीज हुई और भारतीय गेंदबाजी, जैसे धारदार गेंदबाजी की बात कर रहे थे मुकेश, उसके सामने कैम्बल ने सेंचुरी लगाई, शाई होप ने सेंचुरी लगाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक इंडिविजुअल माइलस्टोन भी अपने लिए अर्जित किए। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड के साथ भारत ने हालिया जो सीरीज खेली थी, टेस्ट सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की, 2-2 से बराबर रही थी। उसके बाद टेस्ट मैचेस थोड़े से कम हो गए हैं आजकल, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से ये वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज बहुत अच्छी थी। और अब भारतीय टीम को अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अपने घरेलू मैदान पर खेलनी है, अगले महीने वो होनी है। टेस्ट मैच इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है और भारत अभी इस श्रृंखला में 2-0 की जीत के बाद भी तीसरे पायदान पर है। तो टेस्ट मैचेस में कामयाबी अर्जित करना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक और बात याद रखें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आज की तारीख तक अकेला वो टूर्नामेंट है जहां भारतीय टीम जीत नहीं पाई। 2 बार फाइनल में हारी, 1 बार न्यूजीलैंड से, 1 बार ऑस्ट्रेलिया से, और पिछली बार की तो खैर सिचुएशन डिफरेंट थी, साउथ अफ्रीका चैंपियन बना, उनके लिए बहुत इंडिविजुअली बहुत टीम के लिए खास बात थी। लेकिन हाँ, दिल्ली में भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। और कई बार ये बातें होती हैं कि क्या इंडियन टीम ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, क्योंकि विराट कोहली टेस्ट मैच से हट गए, रोहित शर्मा हट गए, रविचंद्रन अश्विन हट गए, लेकिन रविंद्र जडेजा डटे हुए हैं।
बिल्कुल,
भारतीय टीम में नए खिलाड़ी आ रहे हैं, वो भी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया दौरे को याद करिए, वो कालजयी सीरीज जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी जब टीम इंजर्ड खिलाड़ियों से जूझ रही थी, वहां पर सिराज ने बढ़िया प्रदर्शन किया था। और भारतीय टीम में बड़े जुझारू खिलाड़ी आ गए हैं, बेंच स्ट्रेंथ शानदार है। ओवरऑल भारतीय टीम का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा एज ऑफ नाउ, अगर आप कहेंगे तो मुझे कोई खामी नजर नहीं आ रही फिलहाल। तो
जी, आपने अभी चर्चा की कि ये मैच 5वें दिन तक गया, तो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट है कि वेस्टइंडीज जैसी टीमें, बांग्लादेश हो गई, अब हम पाकिस्तान को ले लें या अफगानिस्तान को ले लें, वो अच्छा परफॉर्म करे ताकि ये टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि
ये देखिए बांग्लादेश और अफगानिस्तान के केस में मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि पाकिस्तान के लिहाज से तो पाकिस्तान तो बहुत लंबे समय से टेस्ट मैच खेल रहे हैं, खेल तो बांग्लादेश भी रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि टेस्ट मैचेस में आज की तारीख में जो टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं, भले ही भारत में खेले जा रहे हो या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, पहले एक टाइम आ गया था जब टेस्ट मैचेस में केवल रन बनते थे और रिजल्ट नहीं आते थे, पांच पांच दिन तक, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था कि तीन तीन दिन तक एक पारी चल रही है टीम की, अब वैसा नहीं होता, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है और स्पोर्टिंग विकेट्स बनाए जाने का प्रयास होने लगा है, भले वो पेसर्स को मदद देने वाली हो या वो स्पिन गेंदबाजों को मदद देने वाली हो, और जो भी होस्ट होता है वो अपने लिहाज से थोड़ा बहुत तो एडवांटेज रखता ही है और उसको ये बिल्कुल अधिकार भी है, तो टेस्ट मैचेस के लिहाज से रिजल्ट आना मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल कंट्रीज का प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, बांग्लादेश की या फॉर दैट मैटर नामीबिया की या अफगानिस्तान की, उनकी प्रायोरिटी शायद शॉर्टर वर्जन ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट।
जी, बात करें वेस्टइंडीज क्रिकेट की, कि एक दौर था जब इस टीम में ब्रायन चार्ल्स लारा, क्रिस्टोफर हेनरी गेल, शिव नारायण चंद्रपॉल, राम नरेसरवन जैसे सुसज्जित बेहतरीन खिलाड़ी हुआ करते थे, आज क्या हो गया वेस्टइंडीज को कि ये टीम डिक्लाइन की ओर जा रही है, स्पेशली टेस्ट मैचेस में?
नहीं, टेस्ट मैचेस में कह लें या वनडे में भी बहुत अच्छे हालात तो नहीं है, T20 में जरूर वेस्टइंडीज का प्रदर्शन अच्छा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा स्वैग है उनका खेल का और उसको अकोमोडेट करते हैं अपने जब वो T20 मुकाबले खेलने आते हैं, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि टेस्ट मैच का जो कलेवर और जो चरित्र है वो है कि आपको बॉल को मेरिट के हिसाब से खेलना है, क्रीज पर टिक करके खेलना है, नंबर ऑफ बॉल्स का कोई बंदिश आपके पास नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है कि आपको 20 ओवर में या 40 ओवर में या 50 ओवर में इतने रन बनाने हैं, तो परसिवियरेंस और जो ट्रू टेस्ट ऑफ क्रिकेट प्लेयर वो कहा जाता है हमेशा कि टेस्ट मैच में ही होता है। वेस्टइंडीज के साथ डबल वैमी है, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट है जो क्रिकेट के में खिलाड़ियों को आकर्षित करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब सफलता सब कुछ लाती है, वो जमाना था 1975-79-83 का, तब हर व्यक्ति वेस्टइंडीज में क्रिकेट, हर खिलाड़ी क्रिकेट खेलना चाहता था, आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में उनके खुद के प्लेयर्स जो हैं वो टीम टेस्ट टीम में नहीं खेलना चाहते, बल्कि वो लीग क्रिकेट खेलना चाहते हैं जहां ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, जो ज्यादा ल्यूक्रेटिव है कमर्शियली, इस यही कारण है कि वेस्टइंडीज, एक तो टीम मैनेजमेंट, उनका जो टीम वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड है उनका मैनेजमेंट ठीक से वो नहीं कर पा रहे, और दूसरा ऑफकोर्स प्लेयर्स तो हट ही रहे हैं वहां से।
जी, बात करें महिला विश्व कप की, तो आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 259 रन का लक्ष्य दिया है, भारत का अगला मुकाबला अब तक की अजेय रही इंग्लैंड से होगा, आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
भारतीय टीम अब तक इस प्रतियोगिता में 2 मैच जीती है और 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा। पहले मुकाबले में श्रीलंका को 59 रन से पराजित करने के बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान को 88 रन से हराया था। पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ हरपन मौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं दूसरे मुकाबले में क्रांति गौड़ ने सर्वाधिक 3 विकेट लेकर यह खिताब जीता। वहीं बाकी दोनों मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को 3-3 विकेट से हार मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन गेंदबाजों के साधारण प्रदर्शन के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। भारत अब अपना अगला मुकाबला मजबूत इंग्लैंड टीम से खेलेगी, जो अब तक इस प्रतियोगिता में अजेय रही है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम साबित होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
शिवेंद्र जी, हमें संक्षिप्त में बताइए कि भारतीय टीम के इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का क्या कारण, अगर बल्लेबाजी चलती है तो उस मैच में गेंदबाजी नहीं चलती, तो क्या कारण रहा है?
नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इंडियन टीम का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट है। देखिए, भारत ने इनफैक्ट पिछले मैच में 330 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 331 रन, किसी भी मैच में आप चले जाइए आज की तारीख में भी 331 रन का टारगेट कहीं से भी आसान नहीं होता, लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमसे बेहतर टीमें हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया से भारत हारा है, लेकिन भारत की जो हार साउथ अफ्रीका से हुई है वो ज्यादा अलार्मिंग है इस टूर्नामेंट में, और भारत को अब न्यूजीलैंड से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है और श्रीलंका से खेलना है। आज का मैच इसलिए और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो भारत के लिए मुकाबला थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे, क्योंकि यहां पर टॉप 4 जो टीमें होंगी वही सेमीफाइनल में पहुंचेंगी 29 और 30 तारीख को जो होना है। तो अगर आज का जो रिजल्ट है अब वो बड़ी दयनीय स्थिति होती है कि आपको अपने प्रदर्शन आगे जाने के लिए दूसरी टीमों पर डिपेंडेंट होना पड़े। घरेलू मैदान पर भारतीय टीम खेल रही है, मैं मानता हूं कि इंडियन टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है, लेकिन बात वही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो सुपरलेटिव परफॉर्मेंस दिया, एक समय उनके ऊपर प्रेशर बना था, लेकिन उनके पास इतने एक बेहतरीन खिलाड़ी है कि उन्होंने प्रेशर को एलिविएट किया और जीत दर्ज की। तो भारतीय टीम को अगले तीनों मैच जीतने हैं अगर सेमीफाइनल पहुंचना है तो।
जी बिल्कुल। बात करें हॉकी की, सुल्तान जोहर हॉकी कप प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने इससे पहले हुए मुकाबलों में न्यूजीलैंड और ब्रिटेन को हराया था। सिमेंद्र जी, इस मुकाबले की शुरुआत जो रही थी वो अच्छी तो नहीं रही थी, लेकिन चौथे क्वार्टर में भारत ने अच्छी वापसी कर ये मुकाबला ड्रॉ किया।
देखिए, आज की हॉकी ऐसी हो गई जो बहुत फास्ट है, और अगर किसी टीम ने, भले ही पाकिस्तान हो या कोई भी टीम हो, अगर इंडियन टीम पर या किसी भी टीम पर 2-0 की बढ़त ले ली पहले क्वार्टर में, तो इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो टीम हार जाएगी या मुकाबला बराबरी पर समाप्त नहीं होगा। ये मैच थोड़ा टॉपसी टर्वी था, इन द सेंस कि पाकिस्तान ने 2-0 की बढ़त ली, उसके बाद भारतीय टीम ने बराबरी करी, फिर भारत ने बढ़त ली, पाकिस्तान ने बराबरी करी, तो अभी 3-3 से बराबरी हुई है। और ये टूर्नामेंट भारतीय लिहाज से एक और लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप भारत में होने वाला है लेटर दिस ईयर, तो इसलिए पीआर श्रीजेश अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे हैं। और ये जौहर कप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 13वां एडिशन है। भारत ने 2 बार टाइटल जीते हैं, 4 बार उपविजेता रहा है, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और 2023 में पाकिस्तान को तीसरे स्थान के मैच में शूटआउट में हराया था। तो ये टूर्नामेंट तो बहुत ही अच्छा है एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भारत ने दोनों मैच जीते हैं, ब्रिटेन को हराया, डिफेंडिंग चैंपियन थे, न्यूजीलैंड को हराया, और आगे भी उम्मीद है कि भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी, बट मैं मानता हूं जूनियर वर्ल्ड कप के लिहाज से अच्छा एक्सपोजर है।
फुटबॉल की बात करें तो मेघालय सरकार ने फुटबॉल को बढ़ावा देने और उसके विकास के उद्देश्य से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, पर्यटन विभाग, मेघालय सरकार और खेल तथा युवा मामलों के विभाग मेघालय सरकार के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया। शिवेंद्र जी, मेघालय की बात कर ले या कोलकाता की बात कर ले, जिसे फुटबॉल का हब भी माना जाता है, तो ऐसे में यह समझौता कितना अहम होगा भारत में फुटबॉल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए?
देखिए, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का बहुत जबरदस्त क्रेज है, और आप मेघालय की बात कर रहे हैं, मेघालय की शिलोंग लॉजोंग करके एक टीम है, वो ISL में भी खेलती रही है, डोमेस्टिक लेवल पर उनके खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं और उनके खिलाड़ी भारतीय टीम में भी खेलते रहे हैं। इसके अलावा मिजोरम और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां पर फुटबॉल को लेकर के बहुत जबरदस्त उत्साह रहता है, और ऐसा कोई भी कदम जहां पर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बडिंग प्लेयर्स को या एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को मिले, मैं उसका हमेशा तहे दिल से स्वागत करता हूं, और उम्मीद यह करता हूं ईमानदारी से यह प्रयास आगे बढ़े, जिससे डेफिनेटली भारत में, नॉर्थ ईस्ट में और पूरे भारत में आम इन जनरल फुटबॉल को फायदा होगा।
जी, बात करें किक बॉक्सिंग की, भारत की प्रियंका ठाकुर ने उज्बेकिस्तान के एक बॉक्सिंग विश्व कप फाइनल जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में प्रियंका ने उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को 3-0 से हराया। इस प्रदर्शन से उनका मनोबल वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी के मद्देनजर कितना बढ़ेगा?
जी, डेफिनेटली बढ़ेगा। देखिए, ये दो जो खिलाड़ी जिनका हमने नाम लिया है, दोनों पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, और अपने मतलब सब कुछ दे करके उन्होंने मुल्क के लिए पदक जीता है, और डेफिनेटली ये किक बॉक्सिंग ऐसा खेल है जहां पर एक फुल कॉन्टैक्ट कैटेगरी होती है, तो यहां पर इन खिलाड़ियों का मेडल जीतना न केवल इनके लिए बहुत अच्छी बात है, बल्कि ऑफकोर्स जैसा कहा कि वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब जाएंगी तो वहां पर भी मोरल बूस्टर तो डेफिनेटली होगा, मेडल जीता है आखिरकार उन्होंने।
जी, बात करिए पावर लिफ्टिंग की, तो मिस्र के काहिरा में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के अनुभवी पैरा भारोत्तोलक जोबी मैथ्यू ने कांस्य पदक हासिल किया। मैथ्यू ने कल लेजेंड्स मास्टर्स वर्ग में ये पदक जीता। थाईलैंड के फोंग साकोन चुमचाई ने स्वर्ण पदक, जबकि पेरू के नील ग्रेसिया ने रजत पदक जीता। और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।